ओम शांति। सब चीजें अच्छी हो लेकिन टकराव होता हो तो हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। और भी कुछ कारण है? तीन और निकाल लें, ईर्ष्या द्वेष, ठीक बात, ईर्ष्या द्वेष, अनुमान, सोचना ज्यादा और अलबेलापन, आलस, बहुत बड़े रोग हैं ये दोनों, छोटे नहीं, भयंकर, देखने में बहुत स्वीट लगते हैं, नींद आती है बहुत अच्छी, धीमी धीमी बरसात हो रही है, कौन उठे, मुश्किल से तो ये सुख मिला है सोने का, सुस्ती आ जाती है, अलबेलापन तो बड़ा नेचुरल काम करता है। और भी कोई बात? जिद का संस्कार, टोटल संस्कार निगेटिव हो, अब वो कौन सी है, भेंट करना, दूसरों को देखना, कहीं कंपैरिजन, कहीं कंपटीशन, कहीं दूसरों से भेंट करना और कहीं ईर्ष्या द्वेष में कंपटीशन, रेस नहीं कंपटीशन। अच्छी धारणाएं केवल पांच सॉलिड, जिनसे हम तेजी से आगे बढ़ते हो, बोलो, बहुत अच्छी धारणाएं, ऊंची, सिंपल नहीं, जो हमें संपूर्ण बनाने में लिफ्ट दे, हाँ, स्वमान में रहना और अंतर्मुखता से आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक बातों को छोड़ दें, तपस्या वाली बातों को भी छोड़ दें, हम केवल धारणा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मिक दृष्टि, स्वमान, ये तपस्या है, बहुत अच्छी बातें हैं। साक्षी भाव, कल की मुरली में सवेरे आया न्यारे और प्यारे, निमित्त उसमें आ गया, ये तीनों शब्द थे, सेवाओं में निमित्त, संबंधों में न्यारे और प्यारे, ऐसी और तीन धारणाएं। तीसरी धारणा हम लेंगे अनासक्त वृत्ति, हम बड़ी बातें कर रहे हैं। चौथी धारणा, बहुत अच्छी और बड़ी धारणा, जो छूट गई है ब्राह्मणों से, छूटनी नहीं चाहिए थी पर छूट गई है, वैराग्य, छूटा या नहीं? नहीं छूटा ना, ठीक है। पांचवी धारणा बहने बोलेंगी, पांचवी धारणा शुभ भावनाएं, ठीक है ना, पांचों, इन पांच धारणाओं में बहुत कुछ आ जाता है, और भी धारणाएं हैं बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन ये धारणाएं हमें योगयुक्त बनने में मदद करती हैं, हमारे संबंधों को, संपर्क को बहुत मधुर कर देती हैं, हमारे मार्ग में जो बाधाएं होती है व्यर्थ संकल्पों की, टकराव की, ईर्ष्या द्वेष की, उसको समाप्त कर देती हैं। शुभ भावनाएं, क्यों हमारी शुभ भावनाएं आवश्यक हैं, क्यों हमारी शुभ भावनाओं की जरूरत है संसार को, क्या महत्व है हमारी शुभ भावनाओं का, क्या होता है इससे, क्या होता है? हमारी शुभ भावनाएं संसार बदल सकती हैं, क्यों जानते हैं आप सब, क्यों, ठीक बोल रहे, क्यों, और बोलो क्यों, बहने बताएंगे, क्योंकि हम सब इष्ट देव और देवियां हैं। साधारण मनुष्यों की शुभ भावनाएं छोटा काम करेंगी, वो भी काम करेंगे, हम सभी एक तो पूर्वज हैं, दूसरे संसार की अनेक आत्माओं के इष्ट, इसलिए हमारी शुभ भावनाएं उनको शांति देगी, उनके दुख दूर करेंगी, उनको शक्ति देंगी, विघ्न नष्ट करेंगी, समझते हैं, इसलिए हमें शुभ भावनाएं रखनी चाहिए। हमारी दुर्भावनाएं क्या कर देंगी, इष्ट देवियों की दुर्भावनाएं क्या करेंगी, अभी अपने उस स्वरूप के नशे में आकर सोचें, श्राप दे देंगी ना, नष्ट कर सकती हैं किसी को, और जब हमारी दुर्भावनाएं किसी को नष्ट करेंगी तो हमें क्या मिलेगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे ना, हमारी स्थिति नष्ट हो जाएगी, हमें बहुत कष्ट होगा, उसकी पीड़ा हम पर कई गुना होकर आ जाएगी। शुभ भावनाओं का इसलिए महत्व है, शुभ भावनाओं के साथ ही इसका ही दूसरा स्वरूप है दूसरों को साथ देकर आगे बढ़ाना। बाबा ने हम सबको बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई भी है, और हम सबसे वो कामना की है कि जिसको कोई नहीं उठाता उसे उठाने वाले बनो, जिसे कोई सहारा नहीं देता उसे सहारा देने वाले बनो। ये महानताएं हैं, छोटी धारणाएं नहीं है। कोई थोड़ा भी अयोग्य व्यक्ति है उसे हटा तो सभी देंगे, ये तो कॉमन बात है, दुनिया में भी यही करेंगे, हम भी यही कर देते हैं, लेकिन उसे मिला लेना, उसकी योग्यताओं को बढ़ा देना, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए बाबा की मुरली में 4-5 साल पहले बहुत सूक्ष्म रहस्य की बात आई, सेवाओं के एक क्षेत्र में नंबर किस आधार पे मिलेंगे। आप सभी को याद हो बाबा मुरलियों में बहुत बातें बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट फिलोसोफी, ताकि किसी को कोई संशय न रह जाए, किसी बात में भ्रम न रह जाए। बाबा ने कहा कि सेवाओं के नंबर इस बात पे नहीं मिलते कि हमने कितनों को संदेश दिया है, हमने कितने सेंटर खोले हैं। सेवाओं के नंबर 3 बातों पर मिलेंगे, हमने कितनों को सुख दिया, दूसरी धारणा इससे भी बड़ी, हमने कितनों को योग्य बनाया, बहुत बड़ी चीज, दूसरों को योगी बनाना, योग्य बनाना, इससे बड़ा पुण्य दूसरा कोई नहीं हो सकता, और तीसरी बात, सेवाओं के फील्ड में हम कितने शक्तिशाली बनकर रहे। इन 3 बातों के आधार पे नंबर मिलेंगे। तो हमारी सेवाओं को सफल करने वाले ये 3 विशेष गुण हैं। जिस आत्मा के अंदर दूसरों को सुख देने की भावना हो, जिसे सहयोग देना आता हो, जो शुभ भावनाएं रखते हो, वो सचमुच महान बन जाते हैं। तो हमें इस रहस्य को जानते हुए कि हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए बहुत कल्याणकारी हैं, ये सूक्ष्म सेवा करनी चाहिए। ये सूक्ष्म सेवा है शुभ भावनाओं की, बाबा की मुरलियों में आ चुका है, शुभ भावनाएं रखना मनसा सेवा है। मनसा सेवा का सर्वश्रेष्ठ साधन है शुभ भावनाएं। तो हम अपनी अपनी भावनाओं को चेक करें, किस किस के लिए शुभ भावना है, किस किस के लिए नहीं। जो हमारे लिए कुछ कर देते हैं उनके लिए घृणा भाव है, उनके लिए बदले का भाव है, या उनके लिए भी कल्याणकारी भावना है। हम अपने को चेक करके अपनी भावनाओं को ठीक करें। बहुत ऊंची धारणा है न्यारापन और प्यारापन, निमित्त भाव, मैं और मेरे से मुक्ति, इसको ही दूसरे शब्दों में कहते हैं। जब ये सब धारणाएं हमारे अंदर आ जाती हैं, तो हमारी स्थिति बन जाती है उपराम, जिसकी बहुत आवश्यकता है, उपराम, कि हम संसार में रहें, कार्य करें, सेवा करें, सबके साथ भी रहना ही होता है, लेकिन उपराम हो, कहीं भी लिप्त न हो, न सेवाओं में न मनुष्यों के साथ। ऐसी स्थिति यदि हम बना लेते हैं तो हमारे सारे कार्य कैसे हो जाएंगे, हमारे सारे कार्य सहज रूप से संकल्पों के द्वारा ही पूरे होने लगेंगे। उलझन, परेशानियां कार्यों में, सेवाओं में भी उलझन समाप्त हो जाएगी। हमें सीखना है न्यारापन और प्यारापन। बाबा की कहानियों में हम सुनते हैं कि जब बाबा सभी बच्चों से मिलते थे, जनरल या पर्सनल, तो जैसे प्यार का सागर लहराता हो, और जब मिल लिए तो जैसे संपूर्ण रूप से न्यारे हों, जैसे उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं, केवल एक से जुड़े हुए हैं। कर्म करते हुए कर्म से संपूर्ण प्यार भी, लेकिन बाहर निकले हुए बुद्धि उससे निकली हुई, सबके साथ रहते हैं, बहुत प्यार से रहना, बुद्धि से न्यारे रहना, ये बहुत बड़ी कला है। इसे सीखना पड़ता है ज्ञान के बल से। यदि हम केवल प्यारे बनते हैं तो क्या नुकसान होता है? ये संसार का एक नियम है, केवल हमारा नहीं, टोटल रचना का नियम, संपूर्ण रचना का, दुनिया का भी। यदि कोई किसी के बहुत प्यारे बनते हैं तो क्या होता है? आगे चल के अटैचमेंट तो हो ही जाता है, कुछ और हो जाता है। अटैचमेंट नहीं, कुछ और। धीरे धीरे उन्हीं संबंधों में टकराव होगा। ज्यादा प्यारे बन गए उतने अलग हो जाएंगे, फिर बात भी नहीं करेंगे आपस में। या तो इतने प्यारे थे कि एक दूसरे के बिना भोजन भी नहीं खाते थे, या इतने न्यारे, न्यारे नहीं, इतने अलग एक दूसरे से कि देखना भी नहीं चाहते, शत्रुता। इसलिए इस संपूर्ण विश्व के ड्रामा का ये बहुत सुंदर नियम है, संबंधों में बैलेंस रखना, लौकिक में भी। जहां बैलेंस आ गया वहां संबंध सदा काल के लिए अच्छे रहते हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे से ज्यादा प्यारे रहते हैं तो क्या बात बीच में आ जाती है जो कष्टदायक बनती है? कि हम एक दूसरे से कामना ज्यादा रखने लगते हैं। दूसरा व्यक्ति अब हमारी इच्छा अनुसार ही काम करे, और ये नहीं होता तो टकराव होने लगता है। इसलिए न्यारापन और प्यारापन बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि प्यारे बनने का पुरुषार्थ करना ही नहीं होता, पुरुषार्थ है ही न्यारे बनने का। और क्या पुरुषार्थ है वो? क्या है वो पुरुषार्थ? सब करते हैं वो, छोटा सा देह से न्यारे बनने का पुरुषार्थ। हम बाबा का ये महावाक्य याद करें, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के लिए कि ब्रह्मा सबसे पहले देह से न्यारे बने, इसलिए विश्व का प्यारा बनने में सबसे आगे, सारा संसार उसको प्यार करेगा। एक समय था लोग उसकी ग्लानी करते थे, हम सब जानते हैं, सुनते हैं, कोई उसे अच्छा नहीं मानता था, और ये समाज ये वो बाबा के लिए बुरे बुरे शब्द बोलते थे जो हम सुन नहीं सकते। लेकिन वही आत्मा विश्व की प्यारी बन गई, और आने वाले समय में सारा संसार उसको स्वीकार कर लेगा, ब्रह्मा के रूप में, अपने अलौकिक पिता के रूप में, न्यारेपन के कारण। इसलिए हमारा बहुत अच्छा अभ्यास हो देह से न्यारा होने का, स्वतः ही प्यारे हो जाएंगे। यदि हम अपने बड़ों का प्यार चाहते हैं, कोई कोई क्या करते हैं, कोई क्या, बहुत लोग यही करते हैं, बड़ों का प्यार चाहिए तो उनके आगे पीछे करते हैं ना, ऐसा ही टोली बनाएंगे, अच्छी सी खिलाएंगे भी, बात भी बहुत प्यार से करेंगे, थोड़ा करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं। अगर सबका प्यारा बनना है, देह से न्यारे हो जाए, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही सबके प्यारे बन जाएंगे, और वो प्यारापन स्थायी होगा, वो समाप्त नहीं होगा। अगर प्यारापन प्राप्त किया जाता है साधनों से तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, वो टकराव में बदल जाता है, उसमें रियल रूप में अपनापन और सम्मान नहीं होता। लेकिन जहां हम देह से न्यारे होके प्यारे बनते हैं तो अनेक आत्माओं का सम्मान भी प्राप्त करते हैं। साक्षी भाव साधनाओं की सबसे ऊंची स्थिति मानी जाती है। आज तक भी संसार में भी जो साधनाएं सिखाई गई, लोगों ने, योगियों ने सिखाई, उसकी सबसे ऊंची स्थिति साक्षी भाव। साक्षी भाव हम सबसे अच्छा कोई नहीं रख सकता। क्यों? क्यों बोलो? क्योंकि हमें ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है। और जो सन्यासी योगी साक्षी भाव सिखाते रहे, उनको वास्तव में साक्षी भाव का पता ही नहीं था। उनका साक्षी भाव पता क्या था? कि साक्षी होकर अपने को देखो, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे श्वास कैसे चल रहे हैं, विचार कैसे चल रहे हैं, मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं, या मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, बस इतने तक। संसार एक खेल है, इसको साक्षी होके देखना। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, इसको साक्षी होके देखना। अपने पार्ट को साक्षी होके देखना, ये अब हम सब कर सकते हैं। तो इस सारे संसार को सतयुग से संगम के अंत तक, जो आने वाला अंत है, उसको हम साक्षी होके देखा करें, ड्रामा की तरह देखा करें, कैसे ये संसार का खेल चलता आया है, कैसे चलेगा। इससे क्या होगा, क्या होगा फायदा इससे? और मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन बहुत है ना मनुष्य के मन में, ऐसा क्यों, बहुत क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसका हमें पता नहीं चलता, पर वो उठते रहते हैं हमारे अंदर। यज्ञ के लिए बहुत क्वेश्चन उठते हैं सबके मन में। आप सब अपने को देखो, ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान के यज्ञ में भी ऐसा बहुत क्वेश्चन है। मैं उन्हें वर्णन करूं तो वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में भी। देखो, हम तो आए थे बाबा के पास क्या क्या सोच के, यहाँ भी वही मिला। हमारी कैसी तकदीर, जहाँ जाए वहाँ वही वही मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अनेकों के मन में है, आत्माओं के लिए प्रश्न, भगवान की कार्य विधि के बारे में प्रश्न। देखो हम सब कितने बुद्धिमान हैं कि भगवान के लिए प्रश्न उठाते रहते हैं। तुम जो काम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, उठाते रहते हैं ना। लेकिन हमें सोचना चाहिए, बाबा जो संपूर्ण है, परफेक्ट है ना, उसका कार्य भी परफेक्ट है। हम उसे जानते नहीं, हमारी सीमित दृष्टि उसे देखती नहीं, इसलिए हम सोचते हैं क्या हो रहा है तुम्हारे यज्ञ में, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो बिल्कुल सत्य है। हमारा दिव्य विवेक, दिव्य नेत्र उसको देखे तो हमें कहीं शंका या भ्रम पैदा नहीं होगा, साक्षी भाव आ जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सत्य। इसके लिए बाबा ने दो शब्द बोल दिए, बहुत अच्छे हैं वो, निस्वार्थ दृष्टि, निस्वार्थ भावना, निर्दोष दृष्टि। बहुत टॉप के शब्द हैं, धारणाएं हैं, निर्दोष दृष्टि, निस्वार्थ भावना। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। यह है ड्रामा के ज्ञान को सामने रखते हुए हम सोचें, क्या किसी का कोई दोष है? है पार्ट है ना, फिक्स पार्ट है, वो क्या करें? डायरेक्टर ने उनको पार्ट ही ऐसा दे दिया, वो बेचारा क्या करे? अब डायरेक्टर ने किसी एक्टर को पार्ट दिया और रोने का, और हम कहें तुम क्यों रो रहे हो, तो कहेगा ना मेरा पार्ट ही ऐसा है भाई, मैं रो नहीं रहा हूं सचमुच, ये मेरा पार्ट है। हम उसको रियल समझ बैठे हैं, इसलिए परेशान होते हैं। साक्षी भाव होने से प्रश्नों से परे की स्थिति हो जाती है, और ये स्थिति बड़ी सुखदायी और आनंददायक है। इसको हम बढ़ाते चलें, इसलिए अपनी दिनचर्या में रोज कम से कम एक बार इस संसार को खेल की तरह देखें। कितना सुंदर खेल चल रहा है, शिव बाबा का खेल है ना। लोगों ने शास्त्रों में इसके लिए अनेक बातें लिख दी कि भगवान ने ये खेल क्यों रचा, खुद इसका आनंद लेने के लिए। खेल रच के हमें नचा रहा है, खुद ऊपर बैठ के इसका आनंद ले रहा है। किसी ने कहा कि मनुष्यों को उलझा दिया है भगवान ने ये खेल रच के। अनेक मान्यताएं शास्त्रों में भी इसके बारे में हैं। अब हम तो सब जानते हैं, इसलिए इस खेल को खेल की तरह देखें। वैराग्य और अनासक्त वृत्ति दोनों बहुत ऊंची धारणाएं। वैराग्य संसार में बहुत कुछ देखते हुए, साधन प्राप्त होते हुए, उनसे बाहर निकले हुए रहना, उनमें लिप्त न होना। वैराग्य अर्थात कहीं भी राग न हो, आसक्ति न हो, मेरापन न हो जाए, कोई वस्तु या व्यक्ति हमें बांध न ले, उड़ने ही न दे, इसको वैराग्य कहते हैं। और इसके पीछे बीज क्या है, संकल्प कौन सा होगा? वैराग्य के पीछे संकल्प जो बाबा बोलते रहते हैं साकार मूल्यों में है, और थोड़ा अच्छा आज था ना, ये सब मरे पड़े हैं, सब मुर्दे हैं, मुर्दों की दुनिया है, पर दिखते तो जिंदे हैं ना सभी, तो भगवान की दृष्टि में सब मरे हुए, और हमारी दृष्टि में अभी सब जिंदे हैं, तब तो सेवा कर रहे हैं ना, मरो वो की क्या सेवा करेंगे। क्या है उसके पीछे संकल्प? नहीं, एक छोटा सा संकल्प है जो हमें अपनी प्रैक्टिस में भी लाना है। रोज बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा पूरा हुआ, अब तुम्हें घर चलना है। ये घर चलने की स्मृति हमें संसार से वैराग्य दिला देती है। हमें घर चलना है, इस बात को भी हम याद कर लिया करें, साक्षी भाव से जुड़ेगी ये बात। इस ड्रामा को जब हम देखेंगे तो हमें याद आएगा कि खेल पूरा हो रहा है, अब वापिस चलना है। वापिस चलना है तो फुल होके जाना है, हम ऐसे नहीं कि खाली होके जाएंगे। एक्टर भी जब एक्ट पूरा करके घर जाएंगे तो कुछ माल लेके जाएंगे ना, पैसा मिलेगा ना उन्हें एक्टिंग का, ये थोड़ा एक खाली चले जाएंगे, घर से खाली आए होंगे, भर के जाएंगे। हम आए भी भरपूर थे और जाएंगे भी भरपूर। हमारे लिए स्लोगन नहीं है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, या है हमारे लिए नहीं, हम तो भरे आए थे भरे ही जाएंगे। यहाँ खाली किया है हमने सब कुछ इस दुनिया में, अब फिर भर लिया तो भरपूर होके जाएंगे, जाना है। ये स्मृति वैराग में रखेगी। क्यों हमें वैराग रखना चाहिए और वैराग की वास्तविक स्थिति क्या है? कुछ लोग वैराग को समझते नहीं है। स्टूडेंट्स को बता दिया जाए वैराग रखो तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये पढ़ने क्या जरूरत है, घर जाना है। किसी लौकिक पिता को वैराग आ जाए तो सब बच्चों से न्यारे हो जाते हैं, तुम्हारा मेरे से कुछ लेना देना नहीं, हम वैरागी चले हम। इससे संसार में डिससर्विस होने लगती है, लोग कहते हैं भाई इनको क्या सिखा दिया गया, ये क्या हो गया। तो वैराग हमें जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाता, वैराग हमें अपने कर्तव्य को छोड़ना भी नहीं सिखाता। वैराग सिखाता है कि सब कुछ करते हुए भी उससे न्यारे हो जाओ, निमित्त भाव से कर्म करो। ये निमित्त भाव बहुत बड़ी धारणा है, हम सब कुछ बाबा के यज्ञ के लिए कर रहे हैं, इस भाव से कर्म करो। अपने परिवार को यज्ञ बना दो, चाहे आप कुमार भी हैं, अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने परिवार को यज्ञ समझ लो तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। ये भावना अपने अंदर बहुत प्रबल कर दो कि हम यज्ञ में रहते हैं, यज्ञ के लिए कार्य करते हैं, यज्ञ से ही भोजन खाते हैं, यज्ञ से ही हमारी पालना होती है। बहुत अच्छा अनुभव इससे हो जाएगा और हमारे पास वैराग रहेगा। जो इस तरह की भावनाओं में जीते हैं उनका कुछ भी विनाश में नष्ट नहीं होगा। क्लियर है ना ये बात? उनको ये संकल्प भी नहीं आएगा मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, बाबा ने मदद नहीं की, मेरी तो रही नहीं ना, बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दी। संकल्प से, भावनाओं से बाबा ने उसको स्वीकार कर दिया, फिर हमारा नष्ट नहीं होता। जो इस भावना से जीते हैं उनका पहले ही जैसे इंश्योर हो गया, उनका कुछ नष्ट नहीं होगा, उन्हें बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। इस तरह हम अपने अंदर वैराग की भावना को बढ़ाएंगे। वैराग इसलिए भी जरूरी है, बाबा ने एक बहुत गुह्य बात इसमें कही है कि बिना बेहद के वैराग के वाइब्रेशंस देने की सेवा नहीं की जा सकती। संसार को हम सकास देना चाहते हैं, वो बिना वैराग्य के नहीं हो सकता। अनासक्त वृत्ति, न्यारापन, प्यारापन, वैराग, अनासक्त, साक्षी भाव, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई धारणाएं हैं। अनासक्त भी यही, भोजन हम खाते हैं भले ही भोजन बहुत स्वादिष्ट हो। स्वादिष्ट भोजन तो सबको ही प्रिय लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो स्वादिष्ट भोजन न चाहता हो। लेकिन ऐसा नहीं स्वादिष्ट भोजन खाते खाते उसमें हम इतने आसक्त हो जाएं कि फिर उसके बिना कोई चीज अच्छी न लगे, इसको अनासक्त वृत्ति नहीं कहेंगे। अनासक्त वृत्ति का अर्थ है हमें अपनी स्थिति ऐसी बना लेनी है, मन की और जीव की, कर्मेंद्रियों पे ऐसा नियंत्रण हो जाए कि जो हम खा रहे हैं वो सब अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी अच्छा न लगे। देखिए सन्यासी इसमें ये सिखाते हैं कि जो भी तुम खा रहे हो कुछ भी तुम्हें अच्छा न लगे, और बाबा हमें सिखा रहा है जो भी तुम खाओ वो सब अच्छा लगे, प्रिय लगे, तो मन का रस भर जाएगा, मन में सूखापन नहीं आएगा। वैराग भी हमें सूखापन नहीं सिखाता, रस भरता है हमारे जीवन में। इन धारणाओं पर यदि हम ध्यान देंगे, सेवाओं में भी अनासक्त, कार्यों में भी अनासक्त, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, तो स्थिति तेजी से आगे बढ़ेगी। ऐसा ना हो बाबा के पास आए थे हम न्यारे प्यारे बनने और हो गए आसक्त, बाबा के पास आए थे सब ईश्वरीय खजानों से झोली भरने और लग गए किसमें, लग गए बोलो, तेरे मेरे में, तेरा मेरा, इसको हम क्या शब्द देंगे, ये हमारी अलौकिकता को नष्ट कर देता है, हमारी दिव्यता को बिल्कुल लोप कर देता है तेरा मेरा, हमारी संतुष्टता को नष्ट कर देता है। इसलिए हम जैसा बाबा के गीत में था, इससे ऊपर उठकर अपने सारे बोझ बाबा को अर्पित कर दें, सारे संसार के बोझ उठाने वाला तुम्हारे भी बोझ उठा लेगा, पर वो तभी संभव होगा जब मैं और मेरे से हम ऊपर उठ गए हों। बड़ी सूक्ष्म बात है दोनों से ऊपर उठना, और यही हमारी इस अलौकिक यात्रा की बहुत बड़ी सफलता है। अब यदि हम सार में ले आए तो इन सब सभी श्रेष्ठ धारणाओं का सार है मैं और मेरे से परे हो जाना। मैं की जगह बाबा, मेरे की जगह बाबा, मैं नहीं बाबा, मेरा नहीं बाबा का, अगर ये भावना हम अपने अंदर चिंतन के द्वारा समा लें, इसके लिए हमें चिंतन करना होता है, तो सारे हमारे बोझ बाबा हर लेता है, हमारे ऊपर कोई बोझ रहता ही नहीं। ये हमें अनुभव करके देखना है। ये बहुत अच्छा अनुभव हम सब कर लें कि हमारे साथ ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। कल भी बाबा की मुरली सारी अव्यक्त मुरली थी ना, कल सारी एक ही बात पर थी ना, याद है, साथी, भगवान साथी बना है। इन सब का नशा हमें तब होगा जब चिंतन हो इन बातों पर। साथी बना है वो, और बहुत अच्छी बात थी कि जब बाबा खुद ऑफर कर रहा है साथ देने का, तो भला और किसी के साथ की कहां आवश्यकता है। यदि हम केवल अपने अंदर इस नशे को बढ़ा दें कि शिव बाबा हमारा साथी है, तो हमें बहुत सुंदर अनुभव होने लगेगा। ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं इस चीज का। तो सभी इस तरह अपने अंदर चिंतन को बढ़ाएंगे, समय सूक्ष्म गति से आगे बढ़ रहा है। हम ये ना सोच बैठे कि पता ही नहीं अभी तो कितने साल और खेल चलेगा। मान लो खेल और बहुत साल चलता भी रहा, थोड़ी देर के लिए सोच लें, और हम ऐसे के ऐसे ही रहे तो हमें फायदा होगा कुछ? हम अपने जीवन के हर पल को सुखद बना दें, ईश्वरीय रसों से भर दें, तो जितना भी समय हमें संगम युग का मिलेगा वो हमारे लिए वरदान हो जाएगा ना। यदि हमें और 100 साल मिल गए और हमने 100 साल भी लड़ते लड़ते ही बिता दिए तो हमें 100 साल का कोई फायदा नहीं होगा। और यदि हमें 2 ही साल मिलते हैं और हम ईश्वरीय सुखों में जीवन व्यतीत करते हैं तो वो क्षण हमारे लिए बहुत बड़े वरदान बन जाएंगे। चिंतन करेंगे सभी, और विशेष रूप से कल की मुरली हमें ये सिखाती है कि हम इस नशे को, इस फीलिंग को बढ़ाएं कि हमें साथ दे रहा है स्वयं भगवान, साथ मिल रहा है उसका, इसको नशे में लाएं अपने। केवल इस बात की जरूरत है, चिंतन करके हम इसको अपने नशे में लाएं तो उसके साथ का अनुभव होने लगेगा। ओम शांति।